एक ऐसे भी दर्शन है या कुछ ऐसा मुझे कहते हैं भाग्य पे विश्वास करते हैं, तो हमारा दर्शन कर्म, तो अगर हम उसे इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म है वही वर्तमान का भाग्य,
वही तो भाग्य है। मैं इसको इसलिए नहीं कर बताया था, गीता में तीन चीज़ें लिखी हुई, एक हमारा क्रियमान, एक हमारा संचित और एक हमारा प्रारब्ध, ये तीन चीज़ें दी। तो क्रियमान क्या है? जो हम निरंतर कर रहे हैं। अब जो हम निरंतर करते हैं वो हमारे संचित भी होता है। तो हमने जो कहा था ना कि एक तो है जो हम करते हैं, फिर एक जो है कर्म जो बंधता है, तो ये संचित हो गया। और प्रारब्ध मतलब जितना संचित में से हम इस जीवन में भोगेंगे। तो हम कर्म करते भी हैं, हम कर्म बांधते भी हैं, हम कर्म का फल भोगते भी हैं, तीनों चीजें एक साथ हमारे चलती रहती हैं। हमारा कर्म हम करते भी चले जा रहे हैं वर्तमान में, हमारे साथ कर्म बंधता भी जा रहा है, जो कर्म हमारे साथ बंध रहा है वो उदय में भी आ रहा है, वो अपना फल भी दे रहा है। तो हम तीनों प्रोसेस वही ये है कि क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध किसको बोलेंगे? प्रारब्ध जो हमने पहले संचित करा था उसमें से इस जीवन में जितना भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, उसी को हम भाग्य कह लेते हैं। सही है आपका अप्रोच, यही अप्रोच, ये हरेक का ही है। मैंने गीता का भी यही अप्रोच, जैनिज्म का भी यही, जो कर्म स्वास्थ्य की विश्वास रखता होगा उसका यही है। जो होने योग्य है वही हुआ है घटित, वो भवितव्यता बिल्कुल अलग चीज, उसको अगर हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम अकर्मण्य होने की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम कर्मठ होने की तरफ। फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि बहुत करके देख लिया कर्म, लेकिन बाद में देखो क्या तुम कर पाए, जो हुआ उसमें तुम निमित्त बने। अभी तो पहले हम आपके भीतर पुरुषार्थ जागृत करेंगे, फिर पुरुषार्थ जागृत हो जाने के बाद कहेंगे कि सब कुछ पुरुषार्थ से नहीं होता, जो घटित होता है उसमें और हमारे पुरुषार्थ में बहुत फर्क होता है। घटित बहुत कुछ होता है, हमारा पुरुषार्थ तो बहुत छोटा होता है, करते हम बहुत कुछ थोड़ा सा है और घटित होता है बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हमारा पुराना भी एडिट होके आता है, कहीं कहीं माइनस होके आता है, कहीं कहीं प्लस होके आता है। हमने आज अच्छा करा, हमारा पुराना अच्छा डिपॉजिट था, तो उस अच्छे का थोड़ा सा करने पर भी ज़्यादा फल मिला, वो क्या था, वो एडिट हो गया है। और हमने आज अच्छा करा और उसमें से भी लाभ कम हुआ तो हमारा माइनस होके आता है। प्रारब्ध भवितव्य क्या था? जो हुआ है वही था, जो हुआ है वो भवितव्य था, जो होने योग्य था वो हुआ है, लेकिन मैंने उसमें कितना करा है ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितना, जितना करा है उसके लायक हुआ है या कि उससे ज़्यादा हुआ है या उससे कम हुआ है, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ वर्तमान पे नहीं है, ये हमारे संचित पर नहीं है, हमारे प्रारब्ध पर। क्रियमान अकेला नहीं है, संचित भी है और प्रारब्ध भी, भाग्य भी। ये प्रोसीजर जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कितना वर्तमान का भोग लिया कितना पुराना भोग लिया हम नहीं कह सकते। जैसे जैसे कि हमने किसी को गाली दी सपोज किया, तो क्या होगा उसका इफेक्ट एट द मोमेंट? उसको बुरा लगेगा, हमारा मन खराब हुआ। ये इफेक्ट हमें किसका मिला, क्या कहेंगे आप? अगर हमने ना दी होती तो नहीं होता ना, लेकिन हमने दी तो हम ये कहेंगे कि हमारे किसी पूर्व कर्म में क्रोध का बंध हुआ था तो हमने दी, और वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ भी है। इफेक्ट कितना हुआ? हो सकता है कि जरा सी चीज़ कहने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाए, हो सकता है बहुत बड़ी बात कहने से भी कुछ ना हो। हमारी जिससे आत्मीयता है उसको हम डांट भी लें तब भी कोई इफेक्ट नहीं होता, और जिससे हमारी शत्रुता है उससे अगर प्रेम से भी एक बात कहें तो वो उसका उल्टा अर्थ निकाल करके हमको कहेगा कि आप हमसे ऐसा कह रहे हैं। अब इसको क्या कहेंगे आप? इसमें वर्तमान भी है और पूर्व का भी जुड़ा हुआ है, वर्तमान का वर्तमान में भी फल मिलता है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो हम करते हैं उसका एट द मोमेंट भी फल मिलता है और आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, ये कर्म स्वास्थ्य में ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जो पहले किया था वो आज भोग रहे हैं, जो आज कर रहे हैं वो कल भोग रहे हैं, ऐसा नहीं, इतना ईजी नहीं है। सब एडिट हो करके तीनों मिला करके होता है, मैंने दो तो कम से कम रहते ही हैं, पूर्व का और वर्तमान दोनों मिल करके इफेक्ट्स होते हैं। कॉज जो है मेजर कॉज कौन सा होगा? एट प्रेजेंट मेजर कॉज, लेकिन उस वो जो कॉज है मेजर कॉज उसके लिए आपके कॉज का कॉज, कारण का कारण क्या है? तो कारण का कारण पूर्व का कर्म का उदय, हमको गुस्सा आई, ये हमारा इसमें मेन कॉज क्या है गुस्सा आने में, हमारा वर्तमान के पुरुषार्थ की कमी, हमने क्यों करी गुस्सा, कोई जरूरी थोड़ी था कि गुस्सा किया ही जाए, नहीं हमारे कर्म का उदय आया और हम झेल नहीं पाए, तो ये आपकी कमजोरी है, कर्म का उदय तो सिर्फ निमित्त बना था, कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो कर्म के उदय में क्रोध आने पर भी शांत रह जाए, तो आप वो नहीं कर पाए, तो वर्तमान का पुरुषार्थ भी आपका मेजर कॉज हुआ कि आपने क्यों, और अब फिर हम थोप देते हैं उस पर कि क्या करें, वो ऐसी परिस्थितियां बन गई, हमारे पाप का उदय आ गया, हमारे कर्म का उदय आ गया, तो हम अपने को संभाल नहीं पाए, लेकिन मेन चीज तो क्या है कि हम अपने को संभाल नहीं पाए, सबसे बड़ी चीज तो ये, तो हम वर्तमान पे हम पुरुषार्थ पे ही ज्यादा ध्यान देंगे, कई लोग जो है गड़बड़ा जाते हैं, या तो ये कहते हैं नहीं मेरे द्वारा ये होना ही था, ऐसा कह के बरी हो जाते हैं, ये होनहार ही थी मैं क्या कर सकता, या कि मेरे कर्म का उदय ही था मैं क्या कर सकता, नहीं द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी, मैं चूका हूँ ये मैं स्वीकार करूँ, फिर बाद में कहूँगा कि हाँ इस चूकने में मेरे कर्म का भी सहारा था बुराना वाला, और क्या करें होनहार ही ऐसी थी, होना ही ऐसा था, ये बात में लेकिन पहले नंबर मेजर पोर्शन वो है, जब धनुष तोड़ा है रामचंद्र जी के हाथ से, तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि मैं सफल हुआ तोड़ने में, नहीं इस समय टूटना ही था, मैं तो सिर्फ निमित्त बन गया, ये होगा दूसरे कार्य में, जब हमसे कोई बहुत अच्छा कार्य होगा तब हम ये कहेंगे कि मैं तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो तो ऐसा होना ही था, जब मेरे से बुरा कार्य हो जाएगा मेरा मैं जिम्मेदार हूँ उसमें, कोई जिम्मेदार नहीं, ये समझना बहुत कठिन, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, तब हम क्या कहेंगे किसी का फॉल्ट नहीं, हमने सोचा था कि इतनी मेहनत करने से इतना आ जाएगा, हमारा अपने बाबत मेजरमेंट ठीक नहीं था, हमें और मेहनत करना थी तब 2% और जाएगा, तो उसमें मेजर कॉज पे हम ये ध्यान दें, अगर हमें आपके जितना नंबर हमने चाहे तो उससे ज्यादा मिल जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे हमारी मेहनत तो थी नहीं, तो कृपा, हम यहाँ पर कृपा कहेंगे, वहाँ अहंकार नहीं करेंगे कि देखा मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना योग हूँ, मैं इतने नंबर ला सकता हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे, उस समय हम कहेंगे कि नहीं कृपा, और जब हमको कम मिला है हमारी अयोग्यता, ये कर्म वासी ये दो चीज़ें जो है व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हैं, पर फैक्ट क्या है, फैक्ट तो फैक्ट है कि वर्तमान भी हमारा दूषित है, पुराना भी दूषित है, और होनहार भी ऐसी थी, तीनों पे दोष जाएगा, लेकिन हम किस समय किस पे दोष लेकर के अपने को संभाल लेंगे, सवाल ये, अगर हमें अहंकारी होना है तो बहुत मौके हैं, सफलता में हम अहंकारी हो सकते, असफलता में हम दीनहीन हो सकते, वो बचना दोनों से, ना हमें दीनहीन होना है ना हमें अहंकारी होना है, हमें बैलेंस बना के रखना है, तो इसलिए हम इस कर्म फिलॉसफी को इस तरह पढ़ रहे हैं कि हमारे हाथ में है सब, हम कर सकते हैं सब, लेकिन जब हम दूसरी तरह से पढ़ेंगे इसी चीज़ को बाद में, तो हम ये कहेंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ रेगुलाइज है, वो सब चलता रहता सिस्टम में, लेकिन जब हम ये चीज़ पढ़ चुकेंगे तब हम फिर अकर्मण्य नहीं होंगे, अगर हम पहले से पढ़ लें कि जो कुछ होना है वो हो ही रहा है, तो मैं कौन होता हूँ उस सिस्टम में, मेरा कोई रोल नहीं है, तो फिर वही बात हो गई ले देकर के कि कठपुतली हैं, जैसा परमात्मा ने हिलाया वैसे हिल गए, ऐसा हो जाएगा तो? जैसा कर्म ने हिलाया वैसे हिल गए, वैसा नहीं, नहीं हमारे अपने ऊपर, ये हमारा मेजर इसमें पार्ट ये है सो करने का, ये ठीक है ना, और
ये मराठी जैसे शास्त्री जी ने रेलवे एक्सीडेंट हुआ था एकदम से तो दायित्व था कि
उनने अपने अपने ऊपर ली सारी चीज, ऐसा ही होना था मैं क्या कर सकता हूँ, या कि मेरे कार्यकाल में मेरे पाप का उदय आया और ऐसा हो गया, ऐसा भी मान सकते थे, नहीं मेरी अपनी मिस्टेक, मैं इससे रिजल्ट मैं इसमें सक्षम नहीं, तो मेरे उसमें ये हुआ तो उससे अपने अपने सही किया, सही स्टेप, एक बुद्धिमान
तो ये दायित्व था कि कर,
ये उसका अपना दायित्व था, मेजर पार्ट उसमें दायित्व का था कि जब इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो पूरा वॉच करिए, कहीं कोई भी दुर्घटना होगी तो उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, ये हमारा कर्तव्य था कि हम वॉच करते हैं, इस तरह
उदय होने के पूर्व कोई आभास नहीं हो सकता, ऐसा कोई
होता है ना, अपन अपन हमारे बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाता है, अपने मन की कोई चीज़ नहीं हुई थोड़ी सी, देखो भाई हमें ये पसंद नहीं हो सकती और गुस्सा नहीं करना, गुस्सा आ जाएगा, ये क्या चीज़ अभी आया नहीं है, ये कह रहे हैं आ जाएगा, अब और उदय, हम लोग उदय से ज़्यादा उदीर्णा करवा लेते हैं, हम सोच सोच के उदीर्णा करवा लेते हैं, अब जिसने ये कहा इसकी ये हिम्मत पड़ गई कि मैं देखता हूँ अब ये जरा भी कुछ बोलेगा तो ठीक जवाब देंगे आप। अब तैयारी कर रहे हैं पूरे लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अब थोड़ा भी कुछ कहेगा तो इतनी बात तो कह ली इतनी मैंने बर्दाश्त कर ली अब इसके बाद अगर कुछ कहेगा तो ठीक कर लूँगा। तो ये क्या चीज़ है ये उदीर्ण करवा रहे कर्म का उदय आता है थोड़ा सा हम करवा लेते हैं और ज़्यादा उदीर्ण जो आशा था बाद में आना थी वो और उसी के झोंके में आ गई सब इकट्ठे आ गए और अब भड़क पड़े आग भड़क गई। इसी तरह हर एक चीज़ के साथ आज हमें यही चीज़ समझ में कि क्या हम अपनी इन कषायों को जो कि हमारे कर्म में ज़्यादा सहायक होती हैं क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं। हम कषाय करके भी और कषाय करते हुए भी और क्या हम कर्मों से बच सकते हैं तो हाँ हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं। आज ये चीज़ अपन को सीखनी पर पहले मैं और किसी को कोई
पिछले जन्म में
कई जन्म में मिलता है जो आज अपन करते हैं उसका ड्यूरेशन जो अपन पढ़ेंगे कि कितना ड्यूरेशन है और कब उदय में आएगा और कितने समय तक उदय में आता रहेगा वो रोटेशन जो बोलते हैं ना तो रोटेशन में ड्यूरेशन भी होता है मतलब फिक्स हो जाता है। जैसे हमने आज कोई काम करा सब मैंने सात अच्छा काम किया कोई तो अच्छे काम का फल एक साधु के लिए साधु के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी कषायें अधिक हैं। एक साधु अगर कुछ अच्छा काम करता है तो सबसे कम स्थिति का बंद लेकिन सबसे अधिक अनुभव वाला स्थिति कम पड़ेगी ड्यूरेशन कम होगा 10.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने सुबह कुछ अच्छा करा है उसका फल 10.5 घंटे के अंदर शाम को मिल जाएगा। सुबह कुछ बुरा करा है उसका फल 10.5 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो वेदनी कर्म की जगह निस्थिति 10.5 घंटे है 12 मुहूर्त मतलब 10.5 घंटे लगभग 48 मिनट का एक मुहूर्त होता तो 12 मुहूर्त सबसे जगह निस्थिति और उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब अगर बंधे कर्म तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर 20 में 20 का गुणा करिएगा नहीं 20 करोड़ में करोड़ का गुणा करिएगा उतने सागर। और सागर मतलब क्या मैं अपन अपने बस का नहीं है कि अपन सोच सके कि कितने समय तक आएगा अपन तो इमेज कर सकते वही इतना मैंने अपन ये मान के चले कि बहुत टाइम तक उसके इफेक्ट्स होंगे जो अपन कहते हैं ना जो ये जनरल लोग मैंने इतनी बड़ी चीज़ को कितनी सी लाइनों में लिख दी कि तवारीखों के भी मंजर भी हमने देखे हैं जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई मतलब क्या हुआ एक लम्हे के लिए चूके थे हम एक क्षण के लिए चूके थे और सजा हमको सदियों तक मिली यही तो है कि कितने दिन तक हमको उस कर्म की सजा मिलेगी पर हम ये सेंस नहीं कर पाते हम ये सोच नहीं पाते हैं वो करते चले जाते हैं गुस्सा आता है तो गुस्सा कर लेते हैं लोभ आता है तो लोभ कर लेते हैं जो कषाय आती कर लेते हम ये नहीं सोच पाते हैं कि क्या करना कषाय कितनी करनी है कैसी वैरायटी की कषाय करनी है और कब करनी है ये अगर हमारे अंदर विवेक आ जाए इतना कि कषाय तो करनी है क्योंकि कषाय के बिना तो नहीं चल सकता कषाय के बिना कहाँ चल रहा है काम सबका चल रहा है कोई ना कोई कषाय होगी अच्छी होगी जरूर होगी तो हम इसमें से क्या करें कैसे कषाय करें तो कैसे करें बताइएगा किस पे करें कब करें ये डिसाइड करना होता है ये अपन समझेंगे। अब इसमें एक चीज ये है कि हमको क्रोध आएगा मान आएगा मायाचारी आएगी लोभ आएगा सब कुछ आएगा। अब लेकिन हमको क्रोध किस पे करना है तो क्रोध किसी दूसरे पे करूँगा तब तो मैं दो तरह से कर सकता हूँ क्रोध दूसरे के हित के लिए भी कर सकता हूँ दूसरे के अहित के लिए भी कर सकता हूँ। मैं क्रोध मान माया लोभ चारों को दूसरे के हित में भी कर सकता हूँ और दूसरे के अहित में भी कर सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दूसरे का तो छोड़ो मेरा अहित ना हो ऐसा क्रोध करना है तो देखो जा कौन सा क्रोध करेंगे जिससे अहित ना हो तो यही है कि अपने ऊपर ही क्रोध करेंगे जब भी कुछ बिगड़ेगा तो अपने ही ऊपर क्रोध कर लेंगे तो मेरा हित ही होगा उससे। मैं क्यों ऐसा हूँ मैंने क्यों क्रोध करा मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा है कि मैं ऐसा क्यों करा किसी पर नहीं आ रहा है मुझे अपने ऊपर या फिर दूसरी एक कंडीशन में जब हम दूसरे के लिए कैसे डाइवर्ट करें एक माँ ऐसा हमेशा उसको लोभ है वो लोभ करती है इस बात का मेरा बेटा जो है वो बड़ा बनेगा अच्छा अब अच्छा नहीं बनता है उपद्रवी निकल जाता है उपद्रव करके आता है तू मानता नहीं है मेरी बात उसको थोड़ा सा डांट दिया अब डांट ही दिया डांटने से ही माना क्रोध करना शुरू कर मैं पीटूं फिर हाँ क्या अब पिटाई पड़ेगी तुम और धीरे धीरे बढ़ता हो सकता है कि पिटाई भी कर दे वो क्रोध कैसा क्रोध है उस क्रोध का इंटेंशन क्या है तो ये बड़ा बन जाए ये मानता नहीं है ये बिगड़ रहा है ये अहित कर रहा है अपने हाथ से इसका हित हो जाता इसके लिए मैंने जो है अपने को गुस्से में ये गुस्सा जो है वो गुस्सा उस वैरायटी में नहीं आएगा जिसमें कि मेरे भोग विलास की सामग्री छिनती थी इसलिए मैंने दूसरे के ऊपर गुस्सा किया, नहीं, इसमें दूसरे के हित के लिए। एक साधक के लिए आचार्य डांट देते हैं कई बार, इतने जोर से डांट देते कि निकल जाए यहाँ से, बाहर संघ से बाहर कर देता हूँ तुझे, इतने जोर से आचार्य महाराज डांट रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनका इंटेंशन क्या है, उनने जो क्रोध कहा है उनका इंटेंशन कि ये इतने बड़े पद पर बैठा और ऐसा करता है, इसको ऐसा नहीं करना, इसके लिए उन्हें सुधारने के लिए जो है डांट दी है। तो ये क्रोध, फिर देखिएगा घर में आया बेटा ये वाली चीज़ है क्या, नहीं वो तो सब खत्म हो गई, किसने कहा तुझे, वो तो आई थी, वो तो पहले ही खत्म हो गई सब, अब अगर खा लेगा तो गड़बड़ करेगा, बीमार है और ये सब चीज़ मांग रहा है ही नहीं, तो कर रहा है, और अभी तो झूठ अकेला बोला है, एक पाप करा है, फिर उसके बाद देखेंगे हम डिब्बे में देखेंगे, तो डिब्बे में तुम हाथ पैर धो के आओ, फिर तो डिब्बा छू गए, तो जब तक हाथ पैर धोने गए तब तक उस डिब्बे में से दूसरे डिब्बे में रख दिया, देख लो कहाँ है उसमें फ्रॉड, सीधा सीधा फ्रॉड। लेकिन किस वजह से, इंटेंशन क्या है उसके लिए। तो क्या हम जब इस तरह से हम रोजमर्रा के जीवन में ऐसा कर लेते हैं, दूसरे के अपने बेटे के हित के लिए हम क्रोध भी कर लेते हैं, हम मान भी कर लेते हैं, तो क्या हम प्राणी मात्र के हित के लिए अपनी कषायों को डाइवर्ट नहीं कर सकते, सवाल ये। मुझे अपने आत्म कल्याण का लोभ जागा है, लोभ एक तो संसार का लोभ जागा है, एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि लोभ कषाय के उदय में किसको क्या जागेगा, ये दिशा कोई निर्धारित नहीं करता, ये हमारा पुरुषार्थ निर्धारित करता है। लोभ कषाय के उदय में किसी व्यक्ति को ये चाहिए कि संसार की चीजें मिल जाए, और दूसरा व्यक्ति कहता कि मुझे पीछे कमंडल मिल जाए, लोभ उसका भी है, लोभ कषाय के उदय में हुआ है। लेकिन एक का लोभ कैसा है कि मैं संसार से पार होने के लिए मुझे पीछे कमंडल मांग ले, और एक व्यक्ति क्या मांग लेता है उसकी जगह पर, मुझे एक स्कूटर मिल जाए। आपके लोभ को डायरेक्शन देना आपका काम है, आपके क्रोध को डायरेक्शन देना आपका काम है, आपकी मायाचारी और आपके मान को डायरेक्शन देना आपका काम है। मैं अपने बेटे के सामने नीचा नहीं होऊंगा तो मैं मान भी करता हूँ, मेरे से दबके रहा करे तो मैं तुम्हारा पिता हूँ इतना भी नहीं समझता, मेरा जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते, कहे कि भी क्या है अपना रिस्पेक्ट करवाना चाह रहा है, रिस्पेक्ट नहीं करवाना चाह रहा, वो ऐसा जान रहा है कि अगर ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो इसका बिगाड़ होने वाला है, मेरा नहीं होने वाला। बड़ों की कृपा को जब छोटे लोग अधिकार मान लेते हैं तब छोटों का पतन होना शुरू हो जाता है। ये लॉजिक है, जब कोई कृपा कर रहा है और उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, विनय नहीं कर रहा है, तो उसका आहित होगा, इस आहित से बचाने के लिए उस पर गुस्सा करते, उस पर मान कर लेते हैं कि मैं बड़ा हूँ, ऐसा कहना पड़ता है कि मैं बड़ा हूँ, तुम क्या सोचते हो मैं इतने छोटे होकर कि मेरे से ऐसी बात करते हो। पंडित जी का उदाहरण है, पन्नालाल पंडित जी का, मैं आपको उदाहरण देखता हूँ कि बहुत क्लियर हो कि अपनी कषायों को दिशा दे सकते हैं, कषाय हमें रोज करते हैं क्रोध मान माया लोग, लेकिन हम उनकी दिशा बदल सकते हैं, हम उनको दूसरे के और अपने स्वयं के हित में लगा सकते हैं, या कि हम उनसे दूसरे का अहित भी कर सकते हैं और अपना भी अहित कर सकते हैं। ये इंटेंशन पंडित जी के बारे में ये है कि बच्चे लोग उनकी संस्कृत की क्लास में पन्नालाल जी को याद करके नहीं ला रहे थे, तो वो एक तो वो अपनी ताले में बंद करके वो रखते थे लाठी, और फिर जब बहुत गुस्सा आ जाती थी तो निकालते थे और दो ठो मारते थे, और दो मार देंगे और फिर उसी में रख देंगे और खुद बैठ जाएंगे और थोड़ी देर रोएंगे खुद, और फिर बाद में रोते रोते कहेंगे तुम याद करके जाऊते काय को मारना पड़ता, तो तुम्हें जो करने से करो भैया, तुम्हें बेकार में कषाय करवाई तुमने, तुम्हें सुधरने हो तो सुधरो, हम क्या कर सकते, क्या रोएंगे 10 मिनट क्लास वास सब खत्म। लड़कों को मालूम है कि पंडित जी को दुखी, और जब दुख होता था पंडित जी को दुख हो रहा, हमारे हमने याद नहीं करा और पंडित जी को दुख हो रहा है, तो आगे वाला अपने आप समझेगा, उसके हित के लिए हमने गुस्सा भी करा है तो उसके हित के लिए करा। इसी तरह से जो है हम अपने जीवन में, हमें लोभ एक बार जागृत हो जाए, आपको काय का लोभ, काय को वहां से यहाँ तक भागे चले जाए, काय का लोभ है, दो बातें अच्छी सुनूंगा धर्म की, ये लोभ था, आपने अपने लोभ को डाइवर्ट कर लिया, आपको अगर आप लोभ को करते तो जरा सिनेमा देखाऊंगा वो भी कर सकते थे आप, जरा बाहर जाकर के और चार लोगों की बुराई कर लूंगा, लेकिन यहाँ ये लोग जागा है कि मेरा आत्म कल्याण होगा इसलिए तुम यहाँ, आपने अपने लोग को दिशा दे, आप अपनी मायाचारी को दिशा दे सकते हैं, आप अपने मन को दिशा दे सकते हैं, आप अपने क्रोध को दिशा दे सकते हैं। ये चीज जो है बिल्कुल एकदम यूनिक चीज है, ये नीरज जी से डिस्कशन हुआ तब तो उन्होंने इस चीज को राइट, ये अपन लोग हमेशा करते ही हैं, तो अपन रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, कई बार अपन फ्रॉड कर जाते हैं अपने मित्र से, फ्रॉड करके काय के लिए उसका, हम कोई अपने कोई भी होगा देखना आप शत्रु से डायरेक्ट बात कह देगा लेकिन मित्र से नहीं कहेगा, छुपाएगा नहीं, इससे पीड़ा हो जाएगी, अपनी पीड़ा ना कहेगा, क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि मेरा मित्र है, मेरी पीड़ा जान लेगा तो और ज्यादा इसको दुख होगा, तो छुपा लिया, क्या फ्रॉड किया, क्या उसके साथ फ्रॉड नहीं किया, उसकी सुरक्षा के लिए ये जो है इस तरह का कंट्रोल करते हैं। और अगर यही अपन इसमें परमार्थ के क्षेत्र में कर ले तो आसानी से कर्म को जीत जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो अच्छी प्रकृतियां हैं कर्म की उनमें तो अनुभाग स्थिति ज़्यादा बनेगी, क्योंकि कषाय के उदय में जो स्थिति अनुभाग पड़ता है तो अच्छी प्रकृतियों में ज़्यादा पड़ेगा अनुभाग और स्थिति, और जो बुरी प्रकृतियाँ हैं उनमें कम होगा, क्योंकि हमारे क्रोध का डायरेक्शन दूसरा है, हमारे क्रोध का इंटेंशन दूसरा। हमें क्रोध करा भी है लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा। मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैंने एक बहुत छोटा सा सेंटेंस दिया था डीजे साहब से वहाँ के नाम दे दोषी इधर गुना, तो बहुत दुखी एक दिन प्रवचन सुनने के बाद आए और 50 लोग बैठे, उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, बहुत रोए थे, इतना बड़ा 58 साल के व्यक्ति और रोना। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, बोले इतना सारा सुन रहा हूँ ये सब कर रहा हूँ लेकिन मुझे बताइए मैं क्या करूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता है, मैं जिस पोस्ट पर हूँ वहाँ पर मुझे कुछ करना पड़ता है, दूसरे को पीड़ा ही देना पड़ता है, जजमेंट बहुत मर्सी विद जजमेंट इज नॉट पॉसिबल, दया नहीं हो सकती निर्णय के नीचे, लेकिन मुझे मेरे भीतर जो है बहुत कटौती है कि मुझे कई बार फिर बोलना पड़ता है, मुझे कई बार लोगों को झूठा पनिशमेंट देना पड़ता है, जानना होगी निर्दोष, लेकिन मेरा लॉ जो कह रहा है मुझे सदोष निर्दोष आदमी को दोषी बना के बंद करना पड़ता है और जो सदोष है उसको छोड़ जाना पड़ता है, इस तरह करना पड़ता है। तो मैंने उनको एक ही सेंटेंस दिया था कि मैंने झूठ बोला है लेकिन मैं झूठा नहीं, मेरी आत्मा झूठी नहीं हुई है उन क्षणों में, मैं हमेशा झूठा नहीं हूँ, मैं अभी बाहर निकलूंगा मैं सच हो गया, मुझे यहाँ मजबूर हूँ, जगह बैठा हूँ वहाँ पर मुझे झूठ बोलना पड़ा है, ताकि मेरा इंटेंशन नहीं है। यही स्थिति इसमें कि क्रोध करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, मुझे आप ऐसा कर लेते तो क्यों मुझे क्रोध करना था, बाद में जरूर ये विक्टी फील होगी। तो डायरेक्शन मैंने हम एक चीज़ हमने सीखी कि हम अपने क्रोध मान माया लोभ को डायरेक्शन दे सकते हैं, दूसरे के हित में भी कर सकते हैं और अपने हित में भी कर सकते हैं। लोभ एक है जिससे हमारा अहित होता है, एक लोभ है जिससे हमारा हित होता है। मंदिर में बैठने का लोभ हमारा हित करेगा और बाजार में बैठने का लोभ हमारा अहित करेगा। ये इसमें जो सोचिएगा अभी झगड़े मत पड़िएगा, अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पहली कक्षा के हैं इसलिए बिल्कुल गड़बड़ नहीं पड़िएगा।
और भी चीज़ें तो
अभी मैं टच ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत हटाना पड़ता है यहाँ वहाँ से सब, उसमें से बीच में से छोटा सा निकालता हूँ, आता दिमाग में बहुत है कि भी बता देंगे बता देंगे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पॉइंट लिख के रखा हूँ उतना ही बताना है। फिर आप जब उसमें माहिर हो जाएंगे आप खुद पूछना शुरू करेंगे, फिर मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, आपके भीतर एक एक प्रश्न उठेंगे कि ये कैसा फिर ये कैसा, मैं बताते चले जाऊंगा, फिर आगे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बस इसमें यही, अब आज अपन जो है एक चीज़ ये सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों के कितने कितने भेद हैं, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है और लिखेंगे नहीं क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा ये मैं दे दूँगा। तो इसमें 148 कर्मों के इंग्लिश में भी नाम और उनकी डेफिनेशन है, बड़े आराम से जो है उनसे उससे आप इससे लाभ ले सकते हैं, मैंने तैयार किया था। आज अपन जो है एक एक कर्म बहुत शॉर्ट में पढ़ लेंगे। ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान को आवृत करने में कारण बनता है, जिस कर्म का उदय हमारे ज्ञान को ढकने में कारण बनता है वो ज्ञानावरणी कर्म है, बहुत सीधी सी चीज़ है। अब इसके भी 5 भेद, मतलब 5 प्रकार का ज्ञान हमें हो सकता है लेकिन उस 5 प्रकार के ज्ञान को ढकने वाले अलग अलग आवरण। पहला आवरण है मति ज्ञान आवरण, हमारे मति ज्ञान अर्थात इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को जो ढक लेता है वो मति ज्ञान आवरण। इंद्रिय से हम जानते हैं चीज़ों को, देखते हैं और देख करके जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में नॉलेज गेन करते हैं एक एक इंद्रिय से, मानसिक मन के द्वारा। तो इंद्रिय और मन के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ढकने वाला एक कर्म है, उसे बोलते हैं। जिस कर्म के उदय में हमारा इंद्रिय और मन से प्राप्त होने वाला ज्ञान ढक जाता है वो मति, मति ज्ञान। इस मति ज्ञान के द्वारा जो हम विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। तो जो इस विशेष ज्ञान को भी ढक लेता है, नहीं होने देता है, वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। हमने एक उदाहरण दिया था कि इधर पानी डला देखा हमने, तो पानी तो हम पहचान गए कि पानी है, लेकिन हमारे अंदर इतना सहोपसम नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि हम ये पता करें कि कहाँ से आया होगा, जहाँ से आया होगा, हम इस प्रपंच में नहीं पढ़ते, हमारी युक्ति बुद्धि नहीं चलती भाई कहाँ से आया। लेकिन तो इसका मतलब है कि हमारा शुद्ध ज्ञानावरण का उतना सहोपसम नहीं है, हम नहीं जानना चाह रहे हैं। हम शुद्ध ज्ञान जान सकते थे कि पानी कहाँ से आया, ऊपर से चूहा होगा, नहीं कमंडल रखा उससे गिर, हमने पानी के माध्यम से कमंडल का भी ज्ञान कर, ये हमारा शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। अर्थ से अर्थांतर के ज्ञान की प्राप्ति का नाम शुद्ध ज्ञान है। एक चीज जान के किसी ने कहा कि घोड़ा लाओ, तो घोड़े कितने प्रकार के होते हैं, हमने वहाँ इतने ऐसे ऐसे देखे थे, उसने अकेला घोड़ा कहा था, लेकिन आपने उस शब्द के माध्यम से और घोड़े का पूरा ज्ञान कर लिया और विभिन्न वैरायटियों का ध्यान कर लिया और अपने मित्र के घोड़े की याद आ गई आपको, ये सब शुद्ध ज्ञान है। जिसका जितना ज्ञान होगा उतना ज़्यादा वो उसके बारे में और विचार कर लेगा, और थोड़ा सा होगा तो वो कहेगा ठीक घोड़ा, तो घोड़ा बाहर है वो होता है घोड़ा, जिसने एक ही देखा होगा उसका एक एक ज्ञान होगा, जिसने कई वैरायटी देखी होंगे उसका उसका ज्ञान होगा। ये शुद्ध ज्ञानावरण के ऊपर डिपेंड करता है, ये शुद्ध ज्ञान, इसको आवृत करने वाला कर्म शुद्ध ज्ञानावरण। एक हमारे भीतर क्षमता होती जो आज वर्तमान में नहीं है, जबकि हम बिना इंद्रिय और मन की सहायता के मात्र विचार करें तो बाहर क्या घटित हो रहा है हम अपने आत्मा के द्वारा जान सकते हैं। इस ज्ञान को आवृत करने वाला एक कर्म है अवधि ज्ञान हमारे, ये हमारे पास आज कैपेसिटी नहीं, इसको क्लावरेंस भी बोलते हैं। चौथे नंबर का ज्ञान है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता, इसका यही है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में कुछ चीज़ लिए है और पूछे कि क्या है, तो अवधि ज्ञानी होगा तो उसको बता देगा कि आपके हाथ के अंदर ये चीज़ है, इस दीवार के उस तरफ ये हो रहा है, वहाँ ये घटित हो रहा है, सब बता देगा। एक भाव पहले की बता देगा, दो भाव पहले की बता देगा, एक भाव आगे की बता देगा, इतना ज्ञान है। क्षेत्र का भी प्रमाण रहता है वो सारी चीज़। ये अपन लोग जो है ना अभी इंद्रिय और मन के द्वारा ही चीज़ें ठीक ठीक नहीं जान पाते हैं, तो बिना इंद्रिय मन की सहायता से कैसे जान पाएंगे, ये योगी का विशेष रूप से। अब फिर मन है पर्याय ज्ञान, वैसे अवधि ज्ञान चारों गतियों में होता है, ये ध्यान रखिएगा, आपके मनुष्यों को भी होता है, पशुओं को भी होता है अवधि ज्ञान, देवों और नायकों को तो नियम से रहते ही अवधि ज्ञान, कोई विशेष वो चीज़ नहीं है। इनको जैसे बाई बर्थ पशुओं को पक्षियों को उड़ने की कैपेसिटी होती है, जैसे बाई बर्थ जो है देवों और नायकों के पास अवधि ज्ञान रहता है। हाँ हमेशा होता है वो, तो जो नारकी है उसको बाई बर्थ वो इस तरह, मैंने बिना इंद्रिय और मन की सहायता के वो ज्ञान होता है, ये मान के चलिए। और सिर्फ जो दिखने वाले पदार्थ हैं उन्हीं को जानता है, रूपी पदार्थ होते हैं जिसमें रूप रस गंध और गंध उनको जानता है, और जो इनविजिबल हैं उनको जानता है, जो शॉर्ट है। एक मन है पर्याय ज्ञान है, जो दूसरे के मन में क्या विचार कर रहा है उसको जान लेता है बिना इंद्रिय मन के सहायता के, सिर्फ उसके मन का आलंबन लेकर के, बस जरा सा सोचा कि ये क्या सोच रहे हैं तो आपके मन में जो होगा वो मेरे मन में आता है, जिसको आज अपन टेलीपैथी कहते हैं, वो एक्चुअली शुद्ध ज्ञान ही है, वो उसका विकसित रूप। मन है पर्याय ज्ञान इससे भी ज़्यादा स्पेशल होता है, वो सिर्फ मुनियों को हो सकता है, उसमें भी जो रिद्धिधारी होंगे विशेष तपस्वी होंगे उनको होगा, सामान्य व्यक्ति को मन है पर्याय ज्ञान नहीं होता। तो मन है पर्याय ज्ञान को ढकने वाला एक कर्म है मन है पर्याय ज्ञान। और एक जो है जब हम सारे पदार्थों को पूरे लोकालोक को एक साथ जान लेते हैं अपने आत्मा के द्वारा, वो ज्ञान कहलाता केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान को ढकने वाला एक कर्म है वो केवल ज्ञानावरण है, वो अपन सबके अपने तीन आवरण हैं अभी पूरे पूरे, ना अवधि ज्ञान अपने को है, ना मन पर ज्ञान है, ना केवल ज्ञान है, मात्र थोड़ा सा आवरण हटा है मति ज्ञान का, थोड़ा सा आवरण हटा है शुद्ध ज्ञान का, थोड़ी बातें जान लेते हैं। अब जरा सोचिएगा कि उसमें भी जो है हम कितना अहंकार कर लेते हैं, जबकि कितना आवरण है। और इतने ही नहीं, ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है, अगर इसके साथ में कोई व्यक्ति मिथ्या से ग्रसित हो तो ये सारे के सारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। दो और दो चार जानना बहुत आसान है, लेकिन आत्मा को जानने वाला ज्ञान प्राप्त है या नहीं है, वरना सब अज्ञान है, ये भी ध्यान रखिए। ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम हमारे ज्ञान को बढ़ा सकता है, लेकिन हमारे ज्ञान को सही और गलत नहीं बना सकता। हमारा ज्ञान सही होगा सच्ची श्रद्धा के साथ, और अगर हमारी श्रद्धा सच्ची नहीं है तो हमारा ज्ञान संविख्या हो जाएगा। ज्ञान में सच्चा और झूठा बना परफेक्टनेस आती है हमारे श्रद्धा और अश्रद्धा से, श्रद्धा से परफेक्टनेस आती है ज्ञान में, और श्रद्धा नहीं होगी तो वो चाहे कितने भी आप बढ़िया से बढ़िया जानकार हो, लेकिन उस ज्ञान को हम सही ज्ञान नहीं मानते, ये ज्ञानावरण का इसी तरह दर्शन। कोई क्वेश्चन?
हाँ जी,
हम ठीक है,
जैसे
महर्षि
आज के
दिन
जो ज्ञान आचार्य हमारे
नहीं, ऐसा लिखा हुआ है कि 21,000 साल के बाद पंचम काल में एक मुनि महाराज जी को होगा, और वो उतना ही सा होगा कि वो जान लेंगे कि पंचम काल का पूरा समापन होने वाला 3 दिन बाकी रह गए, और उनकी आयु 3 दिन की रह गई, इतने जान लेंगे, चारों प्राणियों को बता देंगे अवधि ज्ञान से कि 3 दिन की आयु रह गई, छोड़ दो सब भोजन इत्यादि छोड़ के संलेख ना ले लेंगे, तो 3rd दिन शांतिपूर्वक मरण को प्राप्त होकर वे चारों जीव जैसे ही स्वर्ग जाएंगे वैसे ही मारी थारी शुरू हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, ये उस समय किया। ये अपने सामने अपने को देखना ही मिलेगा, अभिज्ञान देखने को मिलता नहीं, उसके बारे में कुछ भी अपन इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। वो सब श्रुत ज्ञान है, निमित्त ज्ञान कहलाता है। आठ प्रकार का महानिमित्त ज्ञान होता है, वस्त्र का कौन सा पोर्शन हट गया है उसको देख करके कि आगे क्या होने वाला है, आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आपत्ति है कि अच्छा होने वाला, ये जान लेते हैं। छिन्न नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है, आपको कौन सा स्वप्न आया उससे जान लेंगे, आपके तिल और मत्स्य से जान लेंगे, आपके पाम से जान लेंगे, आपके चेहरे की रेखाओं से जान लेंगे, आठ प्रकार से जो है जान लेते हैं। ज्ञान है वो अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान तो जिसमें इंद्रिय और मन की मदद ही नहीं लेना पड़ती है उसके बिना, इसमें तो सब इंद्रिय मन की मदद लेना पड़ता है। ये आपके ज्योतिष ज्ञान ये शुद्ध ज्ञान का फल है। जैसे ही आपने प्रश्न किया और मैंने सारे कंक्लूशन कर लिए और प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से आपके क्वेश्चन का तुरंत के तुरंत जवाब दे दिया कि ये इनका क्वेश्चन इस संदर्भ में है या ये पूछने वाले हैं और ये कौन सी समस्या लेके आए हैं वो हमने जान ली, अकेले आपके उससे जानकर ये तो बहुत
इंट्यूशन
भी सारा कुछ शुद्ध ज्ञान है, इंट्यूशन भी शुद्ध ज्ञान है, टेलीपैथी भी सब शुद्ध ज्ञान है। 21,000 साल वो अपन बाद में, ये पांच ज्ञान हुए उनके ये आवरण है। अब सवाल इसमें ये जानने का है, ये तो कोई भी बता देगा कहीं से भी, सवाल ये है कि मैं अपने इस ज्ञान के आवरण को जितना जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना अज्ञानी होता जाऊंगा, कोई इसमें दोषी नहीं है, मेरे ज्ञान को कम करना ज़्यादा करना मेरे हाथ में है, क्योंकि आवरण मैंने अपने हाथ से डाला है, मैं उसे हटा भी सकता हूँ मैं उसे डाल भी सकता हूँ। इसका उदाहरण है कि जैसे बाहर सूर्य का प्रकाश है और हमने खिड़की बनाई है, खिड़की में से क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं पा रहे, बाहर जाएंगे तो वो केवल ज्ञान का प्रतीक होगा कि बाहर निकल गया पूरा सब छोड़ करके, तो केवल ज्ञान जैसा इसमें से रोशनी आ रही, जिस रंग का कांच लगा दीजिएगा उस रंग की आएगी, जितना पर्दा हटा दीजिएगा उतनी आएगी। लाल रंग का लगाया है मति ज्ञानावरण का पर्दा है, मति ज्ञानावरण का जितना हटा दीजिए पर्दा उतना भीतर आ जाएगा, शुद्ध ज्ञान का कांच लगा दीजिए उसमें से शुद्ध ज्ञान आ रहा है, पर जितना पर्दा डाला उतना आएगा, उतनी रोशनी आएगी, पूरी रोशनी लेना हो बाहर निकल जाएगी, सूर्य पूरा बरसेगा आपके ऊपर, इसमें से तो थोड़ा सा प्रकाश आ जाएगा, और वो भी आपके इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी इंद्रिय और मन कितना सशक्त है उस पर। तो मतलब ये सब ज्ञान से आवरण हमने खुद डाले हैं और हम इन पर हटा भी सकते हैं, ये इतनी नहीं थी। और फिर आता है दर्शनावरण का, जो हमारे दर्शन गुण को आवृत करता है। दर्शन के बारे में हमने आपसे कहा था, एक तो होता है देखना मतलब आँख के द्वारा, और अपन कहते हैं ना कि हमने छू के देख लिया बहुत गर्म है, छू के देख लिया, देखने का हम छूने में भी उपयोग करते हैं, हमने चख के देख लिया, हमने सूंघ करके देख लिया, हमने सुन करके देख लिया, सब में देखने का व्यवहार होता है। इसलिए दो आवरण हो गए, चक्षु दर्शन आवरण और अचक्षु दर्शन। चक्षु के अलावा जितनी इंद्रियां हैं वो सब अचक्षु में चली गई, जो चक्षु दर्शन को ढक ले, आँख के द्वारा जो हमारे जितना हमें ज्ञान होना था उतना ना होने दे, थोड़ा बहुत होने दे, वो कहलाएगा चक्षु दर्शन। अपन को कितना सा ज्ञान है, अपन ज़्यादा ज़्यादा इधर से खाली छोड़ दिया जाए तो एक आध किलोमीटर की दूर थी, बहुत हो गया एक किलोमीटर, लेकिन है कितना अपना चक्षु का क्षेत्र, तो कहते हैं 48,658 सही के बटे इतने, इतना क्षेत्र इतने योजन दूर का क्षेत्र हमारा चक्षु इंद्रिय का है, अगर पूरा हो अपन को तो, लेकिन उस पर आवरण पड़ा हुआ है, हम थोड़े ही पहचान पा रहे हैं, हम उतनी दूर बैठे हुए आदमी को नहीं पहचान पा रहे हैं, हमारे चक्षु का और ज़्यादा कम, हम और दूर बैठे हुए भाई समझ में तो आ रहा है कोई आदमी सा बैठा है पर कौन है समझ में नहीं आता, ये आवरण ये चक्षु दर्शन है। इसी तरह से किसी चीज़ को छू करके भी हम उसके वो नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा रफ भी लग रहा है, थोड़ा स्मूथनेस भी है, एकदम क्लियर विजन नहीं है, तो ये भी विजन है एक तरह से, वो जैसे क्लियर विजन नहीं है वैसे ये भी है कि हम एकदम सेंस नहीं कर पा रहे हैं कि कैसा है, ठंडा एकदम, हाँ थोड़ा ठंडा सा गर्म सा तो लग रहा है, खट्टे मीठे के बारे में भी हम कोई डिसीजन नहीं दे पाते क्विकली, तो ये सब क्या है, ये हमारे अचक्षु दर्शनावरण है, जो कि हमारे चारों इंद्रिय की शक्ति या क्षमता को आवृत करे वो अचक्षु दर्शनावरण, जो हमारे चक्षु इंद्रिय की क्षमता या शक्ति को आवृत करे वो चक्षु दर्शनावरण। और इसी तरह अवधि ज्ञान होने से पहले एक दर्शन होता है, दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, दर्शन मतलब एक जनरल जस्ट ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को हमने देखा, तो जब भी ज्ञान होता है उसके पहले दर्शन होता है। आंख से आप किसी चीज को ज्ञान तो बाद में प्राप्त करते हैं कि कागज है, पहले तो आपने देखा फिर उसके बाद जाना, तो ये दर्शन कहलाता है। देखना मात्र, कोई डिसीजन नहीं लिया, ज्ञान के द्वारा डिसीजन लेते हैं, दर्शन के द्वारा तो सिर्फ देख लेते हैं। तो दर्शन अवधि ज्ञान के पहले जो होता है दर्शन, उसको ढकने वाला अवधि दर्शनावरण, केवल ज्ञान के पहले होने वाला जो दर्शन है वो केवल दर्शनावरण, उसको भी ढकने वाला एक बार इस तरह से। थोड़े से ये अपने उपयोग में जो नहीं आते हैं उनमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उनको ऐसे ही जान लीजिएगा, जो अपने उपयोग में आएंगे रोज उनके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अपने उपयोग में कौन से आते हैं, तो पांच दर्शनावरण, चार तो ये हो गए, पांच और हैं, निद्रा स्लीप, निद्रा निद्रा डीप स्लीप, और प्रचला मतलब ड्रॉसीनेस, ड्रॉसीनेस इसको बोलते हैं, और फिर हैवी ड्रॉसीनेस, प्रचला प्रचला, और एक होते हैं सामना बुलुज्म, सामना बुलुज्म कहलाती है स्थान ग्रति। ये पांच दर्शनावरणी कर्म हैं, ये भी हमारे दर्शन को समाप्त करने वाले हैं। श्रम और खेल को दूर करने के लिए थोड़ा सा जो विश्राम करते हैं वो कहलाती निद्रा, लेकिन जाग करके पुनः सो जाना, गहरी नींद होना, ये कहलाता है निद्रा निद्रा। इसमें ज्यादा कर्मों का बंध होता है। प्रचला बैठे बैठे ही जो है और सहले लगना और सो जाना, और बैठे बैठे या खड़े खड़े चलते चलते भी और पेड़ की फुनगी पे बैठा हो तब भी नींद आ जाना, ये इतनी निद्रा का होता है। ये प्रचला प्रचला कहलाती है, स्थान वृत्ति जिसमें सो गए थे और बीच में कब उठ करके बड़े बड़े काम करके नदी पूरी तैर करके फिर आ करके फिर गीले कपड़े जो कि सो गए फिर से, ये जो अपन कहते हैं ना कि नींद में चलने की बीमारी है सामने, हैं वो ही वो अनिद्रा कहलाएगी, ये जो है सोमनेबुलिज्म कहलाती है, है ना, सोमनेबुलिज्म। तो ये हमारे कर्म के उदय में होते हैं पांचों, ये दर्शनावरण कर्म की वैरायटी। फिर उसके बाद मोहिनी कर्म के पहले अपन ले लें वेदिनी कर्म, या कि पहले मोहिनी कर ले, इसका परिवार थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं सोचता हूँ इसको बाद में लें, लेकिन ले लें पहले ले लें। मोहिनी कर्म दो प्रकार का है, हमारी श्रद्धा को नष्ट करने वाला और हमारे आचरण को नष्ट करने वाला, ये मोहिनी कर्म है। हमारी श्रद्धा को जो नष्ट कर देता है वो दर्शन मोहिनी है, और जो हमारी हमारे आचरण को अपवित्र कर देता है वो चारित्र मोहिनी, सीधा सीधा आचरण की पवित्रता नहीं होने देता। दर्शन मोहिनी की भी तीन वैरायटी, एक सम्यक, एक मिथ्या और एक सम्यक मिथ्या, मतलब सच्ची श्रद्धा जिसके उदय से होती है वो सम्यक प्रकृति, जिसके उदय में जिस कर्म के उदय में सच्ची श्रद्धा नहीं हो पाती वो मिथ्यात कर्म है। पर बार बार समझेंगे इनको, मिथ्यात कर्म क्या है, क्योंकि कुछ श्रद्धा नहीं होने देता वो मिथ्यात कर्म, सम्यक क्या है जिसके द्वारा हमको श्रद्धा हो जाती है, फिर सम्यक मिथ्यात मिली जुली चीज है, कभी थोड़ी देर श्रद्धा भी होती फिर अश्रद्धा भी हो जाती, दोनों मिली जुली, जैसे खट्टा मीठा हो जाए आपके दही में शक्कर डाल दी तो जैसे स्वाद आता है, उसी तरह का ये आ गया कि श्रद्धा भी है श्रद्धा भी है, तो ये सम्यक मिथ्यात करता है। ये हमारे श्रद्धा के लिए इफेक्टेड करने वाला दर्शन मोहिनी का है, ये तीन इसकी वैरायटी। फिर चारित्र मोहिनी मतलब हमारे आचरण को अपवित्र करने वाला, उसमें है चार कषाय मुख्य रूप से, और चारों कषायों के चार चार भेद, तो 16 हो गए, और नौ नौ कषाय कहलाती, मतलब सूडो पैशन, पैशन और सूडो पैशन। तो सूडो पैशन मतलब जब किसी न किसी क्रोध के उदय में वो हो, या मान के उदय में होंगी माया, किसी न किसी कषाय के उदय में जो अपना फल देती हैं वो सूडो पैशन कहलाती, माने ईषद कषाय, थोड़ी सी कषाय तो है लेकिन वैसी नहीं है जैसी कषाय होती है। इसमें भी चार वैरायटी, जो हमारे थोड़े भी सदाचार को भी नहीं होने देती है वो कषाय अनंतानुगत है, सामान्य परिभाषा बता रहा हूँ, कठिन परिभाषा नहीं बता, वैसे वो सम्यक दर्शन भी नहीं होने देती और हमारे आचरण को, आचरण जरा सा भी आचरण नहीं होने देती, वो कषाय है अनंतानुगत, जो हमें थोड़ा सा आचरण पार्शियल हो, जिसके उदय में हम थोड़ा सा संयम तो ले सकते पर पूरा संयम नहीं होने देती है। एक वो कहलाएगी जो कि हमें देश संयम भी नहीं होने दे वो अप्रत्यक्ष, जो हमें संयम बिल्कुल भी ना होने दे वो है अनंतानुगति, जो हमें देश संयम ना होने दे वो कहलाएगी अप्रत्यक्षान, जो हमें सकल संयम ना होने दे पूरा संयम वो कहलाएगी प्रत्यक्षान, जो हमें यथाख्यात चारित्र जैसा हमारा नेचर है वैसा ना होने दे वो कहलाती संजुनक। ये चार प्रकार की कषाय है, अपन रोज करते हैं ये, इनकी टर्मिनोलॉजी भर थोड़ी कठिन है। अब इसमें भी जो है चार प्रकार की, अनंतानुगति में भी क्रोध मान माया लोभ, अपनी कषाय को हम देखें कि कैसी है, तीव्र है मंद है मंदतर है या कि मंदतम है, ये इतना ही तो करना है। इसमें हम किसी से 6-6 महीने के बाद तक कषाय रखते हैं क्या, तो समझिएगा कि अनंतानुगति कषाय है। अगर हम 6 महीने के पहले पहले शांत कर लेते हैं तो मानिएगा प्रत्याख्यान का शायद ऐसा समझ लीजिएगा 15 दिन के भीतर भीतर हमारी सब शांत हो जाती, हम क्षमा मांग लेते हैं, अपनी बोलचाल शुरू हो जाती, ये हमारी अप्रत्याख्यान का शायद। अगर 48 मिनट के पहले पहले हम शांत कर लेते हैं संजय मैंने छोटी बहुत धीमा काम ये कहिए इस तरह से समझ लीजिएगा हंतानबंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान शब्दों पर मत जाइएगा प्लीज, नहीं तो आप शब्दों में कर जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है प्रत्याख्यान का अर्थ होता त्याग तो गड़बड़। प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का मतलब होता है जो हमारे सकल संयम को नहीं होने देते और अप्रत्याख्यान जो हमारे देश संयम को नहीं होने देते, अनंतबंदी जो हमारे बिल्कुल संयम को नहीं होने देते, ऐसे अर्थ लीजिएगा। शब्दों की फिर आप बाद में बता दें, शब्दों को तोड़ेंगे फिर अपन क्या समझेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे आप भी, एक एक शब्द के कई अर्थ। तो यहाँ पर प्रत्याख्यान का अर्थ लेना है जो संयम ना होने दे, या कि जिस जो 15 दिन के बाद तक चले, 15 दिन के पहले पहले खत्म हो जाए तो प्रत्याख्यान, 15 दिन के बाद तक चले तो अनंत प्रत्याख्यान, और 6 महीने के बाद तक चले अनंत अनुबंध, और 48 मिनट के भीतर भीतर शांत हो जाए मंद परिणाम है भैया संतुलन करता है। ये मोटा मोटा हिस्सा, इसी में फिर क्रोध मान माया लोग हर एक की चार वैरायटी, तो 4 प्रकार की है, 4 वैरायटी 16 तो यही हो गई, और फिर उसके बाद इसकी पूरी 25 प्रकृतियां हैं, 4 मोहिनी की और 3 वो दर्शन मोहिनी की सम्यक मिथ्यांत सम्यक, टोटल 28 का परिवार है मोहिनी का पूरा। उसमें जो है मैं फिर आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक देव ती 9 दशाएं। रति मतलब जिसके उदय में हम इंद्रिय सुखों में आसक्त हो जाते हैं, जिस कषाय की वजह से वो कहलाती रति, जिसकी वजह जिसके उदय से हमको हंसी आती वो हास्य कर्म है, जिसके उदय से जो है हम इंद्रिय के विषयों में अरुचि नहीं द्वेष रखना शुरू कर देते, ये हमारे पसंद का नहीं है, ये जरा रफ लगता है, ये नहीं चाहिए, ये क्या चीज़ है, द्वेष द्वेष होगा उसका, और ये बहुत अच्छा है, ये हमको रख दो, ये रति और ये आरती है, सीधा सीधा ऐसा। जो भी पंचेंद्रिय के विषय हैं उनको हम जो चाहते हैं वो हमारी रति है, जो हम उससे द्वेष करने लगते हैं वो हमारी अरति है। ये 2 कर्म हैं, हंसी के लिए भी एक कर्म निश्चित है, शोक के लिए भी कर्म निश्चित है, भाई के लिए भी एक कर्म निश्चित है, जुगुप्सा मतलब घृणा, जिसके दर में हम पदार्थों के प्रति घृणा करना शुरू कर देते हैं, इसके लिए भी एक कर्म, ये 6 कर्म हैं, और जिसकी वजह से मैं पुरुष हूँ इस तरह का भान होता है, ये पुरुष वेद, मैं स्त्री हूँ इस तरह का भान होता है, ये स्त्री वेद है, पुरुष और स्त्री दोनों तरह के भाव जिसके अंदर होते हैं वो नपुंसक, इस तरह से जो है 9 कषाय कहलाती हैं, जो कि किसी न किसी कषाय के उदय में ही होती है। सामान्य रूप से जो है थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अभी तो बाउंसर ऊपर से निकल जाएगी, सुन भर लिया मेरे ख्याल से थोड़ी बात समझ में आई होगी कषाय की, है ना, थोड़ी कषाय की समझ में आई होगी, और क्या आया होगा ज्ञानावरण वगैरह थोड़ा समझ में आया है ना, बाकी ये सब हो गया, 2-4 बार पढ़ेंगे तब उसके बाद आएगा एकदम। वेदनी कर्म और है, 4 हो जाएंगे, वेदनी कर्म बहुत छोटा सा है, जो हमें सुख पहुंचाए वो साता वेदनी, जिस हृदय में हम दुख का वेदन करते हैं वो असाता वेदनी, ये 2 ही भेद हैं उसके वेदनी। यही कर्म की प्रकृति 148 प्रकृतियां, टोटल 8 हैं और उनके ये उत्तर भेद जो अपन कर रहे हैं 148, इनको तो एक मीटिंग में बैठ करके और थोड़े 15 मिनट में पूरा कर लेंगे, और फिर अब जो है अपन जैना चार पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल कर्म फिलॉसफी में काफ़ी चीज़ें अपने को क्लियर हो गई, उनको लिख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन?
भक्ति तो एक तरह से अच्छी बात है, उसमें द्वेष भाव आ रहा है,
देश
दूर का सा एक तब अच्छा ही कब बुरा है,
राग और द्वेष दोनों से बचना, मृत्यु से पहले खत्म तो नहीं होगा, रहेगा हमारे साथ, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं करेगा। श्रद्धा के बिना तो हमने अनादिकाल से भटक रहे हैं, कितना ज्ञान किया है, कितना आचरण का, पवित्र से पवित्र आचरण का पालन किया, लेकिन बिना श्रद्धा, और श्रद्धा भी ऐसी मुझे व्रत नियम संयम करने से स्वर्ग के स्वर्ग के सुख मिलेंगे, ऐसा तो मैं कई बार करा नहीं, मेरे कर्मों की निद्रा होगी, क्योंकि भगवान ने तो ये कहा है कि मैं मुक्त हो सकता हूँ, ऐसी मेरे को श्रद्धा है भगवान के ऊपर, सच्चे देवगुरु शास्त्र पर, उस श्रद्धा के साथ मैं आचरण पालन करूँ, चाहे इतना सा भी करूँ तो वो कार्यकारी है, और बड़े से बड़े उपवास नियम संयम कर लूँ इसलिए कर रहा हूँ, भोग की उपलब्धि होगी, मुझे अच्छा वैभव मिलेगा, तो श्रद्धा पर बड़ा ज्ञान कितना भी हो जाता कहीं नहीं है, मिथ्या ज्ञान हो तब भी साथ में रहता है, अच्छा ज्ञान हो तब भी साथ में रहता है, लेकिन हमारे लिए जो सम्यक ज्ञान है वो हमारे लिए आगे संसार से पार कर देता है, मिथ्या ज्ञान को संसार में भटका देगा। आज देखो ना मेजॉरिटी को मिथ्या ज्ञान है, कितना बड़े से बड़ा ज्ञान है लेकिन अपने आत्मा के बारे में कोई खोज खबर ही नहीं। सब दुनिया भर की सब खबर है लेकिन मुझे आत्म कल्याण करना है, इसकी सुधबुद्धि नहीं, इतना सा ज्ञान नहीं। सारा इंद्रिय ज्ञान है, सारा मन के द्वारा खूब विचार कर लेते हैं लेकिन मेरा आत्मा का हित कार्य है। इसी को तो बोलते हैं कि ये अपने ज्ञानावरण का शरूपसम होने के बाद भी मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्यात् प्रकृति का उदय है सारा ज्ञान। हमने इसलिए कल कहा था कि एक मोहनी कर्म ऐसा है जो कि हमारे सारे कर्मों को उल्टा सुलटा करके रख देता है, सबको मट्टी कर देता है। घातिया कर्मों में एक मोहनी कर्म है। ज्ञानावरण क्या करेगा हमारा बिगाड़, थोड़ा ज्ञान ढक लेगा और क्या करेगा, लेकिन उस ज्ञान को पूरा उल्टा सुलटा कर देना, मिथ्या कर देना, ये तो मोहनी कर्म का काम है, वो सबसे खतरनाक। मोहनी कर्म की जितना जिसका मोह होगा उतना सुख दुख का आवेदन होगा। वेदनी कर्म अपना काम कुछ नहीं करता,